پر یہ بات کرنے کی، اس شہر میں آنے کی توفیق دے دینا. اللہ تعالیٰ تیرا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. اسی وجہ سے اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تکلیف بھی پہنچے تو اس کی شکایت نہ کرو. یہ شہر اتنا بابرکت ہے کہ اس کی تکلیف کے اوپر بھی اگر آپ صبر کرتے ہیں نا اس شہر کی تکلیف کے اوپر، تو اتنا بھی اجر انسان کو ملتا ہے. اتنا مقدس شہر اور اتنی مقدس دن، دو یعنی صفات مل گئی، دو بہت بڑی کوالٹیز یا بہت بڑی برکتیں جو ہے نا مل گئی. دیکھیں یہ دن تو آپ کو گھر میں بھی ملے ہیں، لیکن ایک اور فضیلت اتنی بڑی مل گئی کہ اس جگہ کی بھی برکت ہو گئی. کیونکہ ہر جگہ کا بھی فرق پڑتا ہے کہ کس جگہ پر آپ ہیں، اور دنوں کا بھی فرق پڑتا ہے. ہر دن ایک جیسا نہیں اور ہر جگہ ایک جیسی نہیں. جگہوں میں فرق یہ کہ جیسے کہ یہ جگہ اور نیو یارک میں بیٹھے ہوئے بہت فرق ہے، اسی طرح دن بھی جیسے یہ دن ہے ویسے عام دن کوئی نہیں ہو سکتا. اور جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ان دنوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ رمضان کے بھی دن لے لیں تو اس کا بھی کوئی مقابلہ وہ دن بھی ان دنوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور رمضان میں ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی وقت ضائع نہ کریں، اور رمضان میں ایک ایک لمحہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم بس کچھ نہ کچھ عبادت میں لگے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. جس کو پوچھو وہ کہتا ہے کہ نہیں رمضان چل رہا ہے نا، اس وقت نہ مجھے چھوڑے. ہر کام ہم بعد میں کرتے ہیں. یہ دن بھی ایسے ہی ہیں. ہم سیر کے لیے نہیں آئے، ہم گھومنے پھرنے نہیں آئے. شاید ہم نے گھومنا پھرنا ہوتا تو اور کوئی بہت سرسب جگہ پہ جاتے، کبھی بہت ہی کوئی ایسی سینک جگہ پہ جاتے، کہیں عورت نکل جاتے، کہیں اور چلے جاتے. لیکن اس جگہ پہ ہم کیوں آئے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. اپنی نیتوں کو سب سے پہلے تو اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ضروری ہے. ہم کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ کیونکہ اگر مقصد پہ آپ فوکس رہیں گے نا تو پھر آپ عبادت بھی اچھی کر سکیں گے، پھر آپ زیادہ جوش کے ساتھ بھی کر سکیں گے، اور پھر آپ کی کوشش بھی زیادہ ہوگی، آپ کی کوشش کم نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کو بھول گیا نا تو پھر یہ ہوگا کہ پھر اچھا چلو ٹھیک ہے حج کر نہیں آیا نا تو کوئی بات نہیں، جسٹ ریلیکس. نو، جو مقصد ہے وہ ہمارا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. یہ مقصد ٹاپ پہ تین ہونے چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کرے. میں یہ دعا لے کر آئی ہوں، میں یہ حاجت لے کر آئی ہوں. کسی کے دل میں کوئی حاجت ہوگی، کسی کے دل میں کوئی، لیکن ٹاپ پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب. کامیابی یہ نہیں کہ مثلا آپ لوگوں کے بچوں کی بھی بہت سی دعائیں ہوں گی، بچوں والوں کی، ماؤں کی تو ہمیشہ سب سے بڑی دعا ہوئی بچوں کے لیے ہوتی ہے. میں اس لیے سمجھ سکتی ہوں میں بھی ایک ماں ہوں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی دعا شاید بچوں کے لیے، اپنے سے بھی پہلے. تو کوئی بچوں کی لے کر آیا ہوگا، کوئی بیماری سے شفا کے لیے لایا ہوگا، کوئی اور کسی قسم کی لایا ہوگا. لیکن جو سب سے اوپر ہماری دعا ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر، کیونکہ اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. محروم ہے وہ شخص جو کہ اور سب کچھ مانگ لے لیکن اتنی بڑی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اتنی بڑی چیز کو نہ مانگے. تو سب سے پہلی دعا یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی جہنم سے آزاد کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ آگ کیسی ہے. ہم نہیں جانتے، ہم صرف پڑھ کے بھی نا اتنا اس چیز کو یا سن کے بھی اتنا اس کو گرافک سمجھتے ہیں کہ ہم سے سنا بھی نہیں جاتا. ایٹ ٹائمس ہم سے سنا بھی نہیں جاتا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سننا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، یہ ہمیں باتیں بھی نہ بتاؤ. ہاؤ اباؤٹ اس کو دیکھنا، دیکھنا اس کو. وہ عین الیقین ہے، جب دیکھ لیں گے اور حق الیقین ہے جو اس کے اندر جا کے دیکھا تو پھر تو بس پوری ہو. تو ابھی تو علم الیقین ہے، یہ علم الیقین کا مرحلہ تو پہلا ہے، اس کے بعد آتا ہے آپ علم الیقین. ایسے ہے جیسے آپ مجھے آ کے بتائیں کہ باہر کوئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی آگ لگ گئی، तो ये है इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन है कि मैं अपनी आंख से देख लूंगा, हक्कुल यकीन है कि अगर उसके अंदर जाके देखे तो वो हक्कुल यकीन। तो अभी हमें सिर्फ इल्मुल यकीन है, हमें ये यकीन है कि अल्लाह की एक आग है, हमने देखी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं, जो उस आग पे मामूर है, वो फरिश्ते हुआ जो कभी हंसे नहीं है, कभी हंसे नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे और उन फरिश्तों को देखा था जो जहन्नुम पे मामूर थे, तो आपने फरमाया ये कैसे फरिश्ते हैं? सारे फरिश्ते देख के मुझे खुश हुए, ये खुश नहीं हुए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जहन्नुम का दौर होगा है ना, ये कभी नहीं आज तक हंसा, अगर ये खुश होता तो मुस्कुराता तो आज मुस्कुराता, अगर आपको देख के भी नहीं तो ये कभी नहीं मुस्कुराएगा। ये उनका हाल हो चुका है। और वो फरिश्ते अल्लाह ताला ने फरमाया जो यफ़अलूना मा युमरून, वो वही करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया। तो जहन्नुम की आग से खुद को बचाना और अपने बच्चों को बचाना, चाहे हमारी हमारे बच्चों के लिए कितनी ही दुआएं हो, सबसे बड़ी दुआ उनके लिए ये अल्लाह ताला हमें भी और उनको भी जहन्नुम की आग से बचाना। अगर आपने उनके लिए करियर मांग ली, अच्छी बीवियाँ मांग ली, अच्छे बच्चे मांग लिए, उनकी सेहत की दुआएं कर ली, लेकिन सब में कमी इस बात की है कि अगर आपने उनके लिए जहन्नुम से आज़ादी नहीं मांगी, तो सबसे बड़ी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें, हमारे घर वालों को, हमारे सब प्यारों को, तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को जहन्नुम से आज़ाद कर देना। जानते हैं आप जितने लोग आए होंगे ना, अगर आप इनके लिए दुआ करेंगे ना, या अल्लाह ताला सबको जहन्नुम से आज़ाद कर दे, या आप इनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबकी बख्शिश कर दे, तो हर बंदा, हदीस में आता है जितनों के लिए दुआ की ना, हर बंदे के पीछे एक नेकी मिलेगी, हर बंदे के पीछे। तो हमारा क्या जाता है, सिर्फ इतना सा कहने से कि अल्लाह जितने आए हैं ना, अल्लाह ताला सबको जहन्नुम से आज़ाद कर दे, सबकी बख्शिश कर दे। वो सिस्टर आ रही हैं, वो भी बैठ गए। और दूसरा ये जो जो हमारे पीछे हैं, जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा था अल्लाह ताला, तो उनकी भी बख्शिश कर देना। आप देखें कितने लोगों की अमानतें हमारे पास हैं कि जिससे भी आप भी मिले होंगे, उन्होंने यही कहा होगा हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और बहुत सारे लोग बताते भी नहीं क्या दुआ कर रहे हैं। तो क्या उनके लिए सबसे बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब की बख्शिश कर देना, अल्लाह ताला इन सब को जहन्नुम से आज़ाद कर देना, ये सबसे बड़ी दुआ है जो आप उनके लिए मांग सकते हैं। तो उनके लिए मांगे और इनके लिए मांगे जो यहाँ पे आए हैं, और अपने लिए मांगे। और बख्शिश की दुआ दूसरी ये, अल्लाह ताला हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। क्योंकि इन दिनों में जो सबसे अल्लाह ताला को महबूब दिन है, जो अल्लाह ताला के प्यारे दिन है, अगर इनमें हमारी बख्शिश ना हुई तो फिर कब हो सकती है? अगर अल्लाह ताला ने इन दिनों में भी हमें माफ़ ना किया तो और कौन सा दिन हो सकता है जिस दिन हमारी बख्शिश हो सके? फिर तो कोई और दिन नहीं हो सकता। क्योंकि ये अल्लाह ताला के सबसे प्यारे दिन हैं, ऐसे दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा, अरफा के दिन अल्लाह ताला बंदों को जहन्नुम से आज़ादी देता है। सबसे ज़्यादा पूरे साल में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अल्लाह ताला जहन्नुम से लोगों को आज़ादी उतनी तादाद में देता हो जितनी इस एक दिन में, अरफा के दिन में देता है। यानी पीक है वो दिन अल्लाह ताला की रहमत का। अल्लाह ताला की रहमत है ना जहन्नुम से आज़ाद करना लोगों को और जन्नत में दाखिल करना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। तो अल्लाह ताला की कितनी रहमत जोश में होगी कि 9 तारीख को जो इसका अरफा का दिन है, इस दिन अल्लाह ताला इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है कि शैतान भी रोता है कि उस दिन के मैंने तो इनको इतना वर्गलाया, इतना बहकाया, देखो आज इन सारों ने जहन्नुम से आज़ादी पा ली। तो शैतान भी उस दिन गमगीन होता है, शैतान भी उस दिन होता है। तो अपने आप को ऐसे समझना, ये नहीं समझना कि हाँ हम आए हैं तो अल्लाह ताला हमें बख्श दे, बस ये एक दुआ है जो हमने मांगी, एक रस्म है कि चलो हम चलो दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर दे। नहीं, इस तरह से नहीं बख्शिश मांगनी, इस एहसास के साथ मांगनी है कि मैं वाकई बहुत गुनाहगार हूँ और अल्लाह मैं गुनाहों का ये बोझ लेकर और इतनी दूर से, अब जैसे जो हमारे साथ ग्रुप में आए हैं या जो और लोग, आप लोग, हम कितने सात समंदर पार जिसको कहते हैं, वहां से हम सफर करके आ रहे हैं क्या पाने के लिए, कि अल्लाह तू हमें पाक साफ कर दे। क्योंकि अगर ये हमारा हज हज मबरूर हो गया ना, तो हम गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएंगे जैसे आज पैदा हुआ हुआ बच्चा, जब इस हज का मेरे जहन में ख्याल आया, तो मैं हालांकि पहले भी हज किया, लेकिन उतना उस वक्त शऊर नहीं था ज़्यादा, यंग एज जैसे होती है तो उस वक्त किया था। तो अब का जो हज था, नियत इस चीज़ की घर से ही करके आई हूँ और दुआएं करके कि अल्लाह ताला इस हज को हज मबरूर बस बना। अगर ये हज मबरूर बन गया तो वो मेरी किस्मत बन गई। तो उस कोशिश में लगना है कि हज मबरूर ही बनाना है, उसको देर वाला हज, कबूलियत वाला हज। हज मबरूर कौन सा हज है? वो हज जो कबूलियत वाला हज हो, उसको हज मबरूर कहते हैं कि अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। और जो कबूलियत वाला हज है, उसकी जजा क्या है? हज मबरूर की जजा सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं। और हज मबरूर ही वो हज है जिसमें इंसान ऐसे पाक होता है जैसे आज पैदा हुआ वो बच्चा। और याद रखें, हर एक का हज हज मबरूर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट है कि जो बस यहाँ पे आ गया ना, सबके बस हज कबूल हो गया और सबके हज मबरूर है, ऐसा नहीं होता। इसलिए क्योंकि इसका सबूत एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी आता है और वो परागंदा है, बाल बिखरे हुए हैं और ऐसे है, और सफ़र से आया इतना, और फिर उठा के हाथ अल्लाह से दुआएं करता है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि उसका गोश पोश हराम का, उसका चलना फिरना आना सब हराम का, तो उसकी दुआ रद्द कर दी जाती है। हालांकि वो भी सफ़र करके आया, हालांकि वो भी बिखरे बाल है, कैसे उसके हालात हुए। तो इसका मतलब है कि हर एक का हज ऐसा नहीं कि कबूलियत वाला, अब हम आ गए तो इसका कबूल होना ही था, अब आ गए। कुछ बहुत बहुत लोगों को आपको ये कहते हैं, सुनेंगे कहेंगे अल्लाह ने बुलाया इसका मतलब कबूल ही कबूल है तुम्हारा, ऐसा नहीं। हमें इसके लिए कोशिश करनी है कि ये कबूल हो, इसके लिए दुआएं करनी है और अपने हज को ऐसा बनाना है कि फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, कि ना इसके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो, ना इसके अंदर कोई गुनाह का काम हो, ना मियाँ बीवी के दरमियान कोई शहवत की बात हो। ये तीन काम है अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बता दिया। तो लड़ाई झगड़ा में ठीक है, किसी ने कुछ कह भी दिया कोई बात नहीं, छोड़े कोई बात नहीं। बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे, आप अभी मीना में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नागवार गुजरेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि किसी ने कुछ बोल दिया आपको, कोई आपसे लड़ने के लिए खड़ा हो गया, आपका कसूर भी नहीं था और खामखा कोई आपके ऊपर चढ़ दौड़ा, तो उस वक्त सब्र, सब्र के साथ। तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गुनाह नहीं, ना किसी की गिबत करें, ना ज़्यादा बातें करें, ना कोई ज़्यादा कुछ भी। देखिए जितना बोलेंगे कुछ गलत बात निकल जाएगी मुझसे। कोशिश करें अपना कुरान खोल के इसको तिलावत करें। और ये दिन है तकबीरात पढ़ने की, तो तकबीरात उठते बैठते पढ़े, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब नबी अलैहिस्सलाम कोई काम बता दे ना कि इन दिनों का, कि इन दिनों में ये काम करो, इसकी कसरत करो, फरमाया तकबीर की, तहलील की, तहमीद की कसरत करो, तो वो काम हमें सबसे ज्यादा करना है। ठीक है, जिनका नहीं बताया गया, कहा गया बस कोई भी नेकी करो, वो अलग बात है। आप वैसे तो जितनी भी नेकियां करें, लेकिन जिस चीज़ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमा दी ना, उस काम को हमने ज़्यादा करना है। और फरमाया कसरत करो, इसका मतलब हम एलिवेटर में जा रहे हैं, क्यों खामोश हैं, चुप करके खड़े हैं, उस वक्त हम कर सकते हैं, क्या पता वो एक अमल ही हमारे मीज़ान में इतना भारी तुल जाएगा कि क़यामत के दिन वही हमारी निजात का जरिया बन जाए। हम क्या जाने, क्या पता हमारा कोई वो एक ही अमल हो जिसकी हमें ज़रूरत क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा पड़ जाए, वो एक तकबीर। हम खामोश क्यों होते, हम वो तकबीरात क्यों नहीं पढ़ते? तो ये तकबीरात पढ़ने के दिन, ये अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने के दिन है, ये उसकी हम्द बयान करने के दिन है। तो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानल्लाहि बुकरतु वासीला, ये पढ़ लें। नहीं तो सिर्फ अल्लाह अकबर पढ़ते जाए, आपको कुछ भी नहीं आता, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते जाए, लेकिन खामोश ना रहे। उठते बैठते कहे, आप अपना सामान रख रहे हैं, डाल रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, हरम की तरफ जा रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, आप और किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए भी, ये काम तो हम कर सकते हैं ना, कि हम मुसलसल अपनी ज़ुबान पर ये कलिमा रखें और जितना ज्यादा ये तकबीरात आप पढ़ेंगे उतना ही आप देखें गुनाहों से बचे रहेंगे, खासतौर पे जुबान के गुनाहों से, क्योंकि कोई फालतू बात नहीं निकलेगी ना। तो तकबीरात की कसरत करें इन दिनों के अंदर, इतनी कसरत करें कि आपकी जुबान पे जारी हो जाए। और अरफा के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु अल मुल्क व लहु अल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन
कदीर।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे भी और मेरे से पहले भी अम्बिया की ये दुआ, ये बेहतरीन दुआ है। हालांकि इसमें कुछ मांगा नहीं गया, सिर्फ अल्लाह की तौहीद बयान की गई है। अल्लाह ताला को इतनी पसंद है अपनी तौहीद के हम उसकी तौहीद बयान करें कि ये उस दिन की सबसे ज्यादा बेहतरीन दुआ करार दे दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मतलब बेहतरीन दुआ करार दे दी गई। उस दिन का सबसे अच्छा कलमा ये कलमा है कि अगर आप ये बयान करते रहें, यानी आप कोई दुआ नहीं भी करेंगे जिस वक्त आप उस दिन, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सबके साथ तो उस दिन नहीं होंगी, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो मेरे साथ ग्रुप में नहीं है, तो उस दिन जब आप थक भी जाएं आपको अपनी कोई दुआएं नहीं भी याद आ रही ना, तो बस यही पढ़ते रहें, क्योंकि आपकी सारी दुआओं के लिए काफ़ी हो जाएगा ये एक दुआ। जब नबी अलैहिस्सलाम ने बता दी तो उनसे ज़्यादा हमारा खैर था कोई, जब उन्होंने बता दी, उन्होंने बयान फरमा दी कि ये दुआ करो, तो इसका मतलब है कि बस इस दुआ को तो हमने पकड़ लेना है कि हमने जब से जुहर पढ़ लेनी है उससे पहले अपने आप को बहुत ना थकाएं। जो सुबह का टाइम है ना, फजर से जुहर तक का टाइम, उसमें बेशक आराम करें, अपने आप को बिल्कुल नहीं आपने थकाना। जुहर असर जब आपने इकट्ठी करके पढ़ ली, उससे मगरिब तक आपने किसी वक्त आराम के लिए नहीं बैठना, कोई फजूल बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ या तो ये पढ़ते जाएं या आप दुआएं करते जाएं। वो समझ लें कि वो टाइम है जो आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए, जिन दुआओं को आप लेकर चले हैं वहां से, वो सब मांगे और इतनी मांगे कि समझ लें अल्लाह ताला ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, और अल्लाह ताला हमसे खुद पूछता है कि आपको क्या चाहिए मेरे फरिश्तों, ये क्यों क्या चाहते हैं ये। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नजूल फरमाता है उस दिन, और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों पे फख्र करता है कि इन लोगों को देखो अपने घर बार छोड़ के आ गए, ये क्या मांगते हैं क्या चाहते हैं। तो वो दिन तो है कि हमारे लिए कामयाबी का दिन, अगर हमने उसको उस टाइम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत के पास ऊँटनी पे सवार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे थे, और सोचें कि जोहर असर पढ़ने के बाद से मगरिब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं जारी रखी, और एक हाथ से ऊँटनी की जो वो थी उस रस्सी क्या उसको पकड़ा हुआ था नुकेल को, और आपके हाथ से जब गिर जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ नीचे नहीं करते थे, एक हाथ से ही उठा के फिर कर लेते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ ऐसे रखे। तो अपने हाथों को बुलंद करें, अल्लाह ताला को दिखाएं कि अल्लाह हम फकीर हैं, हम मोहताज हैं, और हम तुझसे मांगने आए हैं, और हमें सब कुछ ही चाहिए। ये ना कहें कभी भी अल्लाह बस ये दे दे बाकी चीज़ों की खैर, जो देने वाला ना उसके खजाने बहुत बड़े, वो हम सबको भी सब कुछ अता। हम तो क्या आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक, जिन्नों इंस सब जमा हो जाएं, हदीसे कुदसी है सब जमा हो जाएं एक मैदान में, और अल्लाह ताला से मांगना शुरू करें, और मांगे और मांगे और मांगे, इतना मांगे कि सारी अपनी मांगे जो उनके दिल में आता है सब कुछ मांग लें, और अल्लाह ताला सब को एक एक को अता फरमा दे, तब भी उसके खजानों में इतनी सी कमी आती है कि जितनी सुई को समंदर में डुबो के निकालो तो उसके ऊपर पानी लग जाता है। उस सब को अता कर, आपका मामला किसी इंसान के साथ नहीं है, इंसान है जो आपको कहेगा अच्छा मैंने इतना दे दिया अब और मांग रही हो, अब इतना और दे दिया अब और मांग रही है, ये इंसान कह सकते हैं। अल्लाह ताला को पसंद है हमारा मांग, और जब हम दिखाते हैं ना कि अल्लाह हम हर चीज में ही तेरे मोहताज हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं और हम फकीर हैं, और वाकई हम फकीर हैं, तो फिर अल्लाह ताला और नवाजता है। तो अपना फकर दिखाए, अपनी मोहताजी दिखाए, और अल्लाह ताला तू गनी है, तू देने में बखील नहीं है। एक होता है जो जिसको डर क्यों नहीं, दो वजह हाथ होती है जिसकी वजह से कोई नहीं देता, या तो वो बखील होता है या फिर उसको ये डर होता है मेरी एक चीज कम ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ना तो बखील है और ना उसको ये डर है कि उसके खजाने कम हो जाएंगे। वो जितना भी दे उसके खजानों में कमी नहीं होती। वो आज तक जब से ये कायनात पैदा हुई, जब से उसने पैदा की, वो खिला रहा है, पिला रहा है, सस्टेन कर रहा है सबको कायम रखे हुए, तब भी उसके खजानों में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। तो हमें दे के उसके खजानों में कहाँ फर्क पड़ जाना। तो यही बात अल्लाह ताला से कहे, अल्लाह तुझे, तूने दे के तेरे खजानों में थोड़ी भी कमी आ जानी। अल्लाह तू तो गनी है, तू अता फरमाने वाला, तू सबको अता कर दे जो ये मांग रहे, सिर्फ अपने लिए ना कहे, सबको या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं सब तेरी मोहब्बत में आए हैं, सब फकीर है, सब घर छोड़ के। देखिए इस वक्त तो हम सब अपने घरों के अंदर एसी में बैठ सकते थे, हम सब अपने घरों में आराम कर सकते थे, हम जाके टेंट में बैठ रहे हैं, गर्मी में निकल रहे हैं। अल्लाह ताला किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए, तेरी खातिर हम आए हैं। और जितने आपके कदम हैं जब से आप घर से निकले हैं, सब अल्लाह के रास्ते हैं। एक एक कदम का आप अजर पा रहे हैं, एक एक कदम का, एक एक लम्हा जो आपका गुजर रहा है वो उसके रास्ते में। तो कितनी बड़ी सआदत है, आप अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे मेहमान हैं और मैं इनको नवाजता हूँ। जो भी मुझसे मांगते हैं, हाजी और उमरे करने वाला, ये दो लोगों का अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरे मेहमान हैं। जो ये अल्लाह ताला से सवाल करते हैं अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला देने से चूकता नहीं है और